शांति, ओम शांति। अपने से ऊंचा उठाने वाले बाबा, अपने से आगे बढ़ाने वाला बाबा, बाबा हमारा इतना एहसान करते हैं, हम कैसे चुकाएंगे, कैसे चुका सकते हैं एहसान उनका। इतना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाया बाबा ने, तो कैसे हम उनका एहसान चुका सकेंगे उनकी श्रीमत पर चलकर, है ना। जितना जितना हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं उतना मानो बाबा का प्यार हमें और मिलता है, तो हम संतुष्ट होते हैं कि हमने बाबा का एहसान हम चुका रहे हैं। तो आज बाबा ने क्या श्रीमत दी है, बहुत बड़ी श्रीमत दी है, बहुत बड़ी आज्ञा दी है। क्या दी होगी आज्ञा, कहा जाता है गायन है, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग रास रचाऊं, बहुत कुछ है। तो बाबा कहते हैं ये तुम बच्चों के लिए, वो तो गोपियां कृष्ण के लिए गाती है, लेकिन है तो शिव बाबा के लिए कि हम बाबा संग ही बैठे, बाबा संग ही खाएं। तो आज बाबा ने बहुत बड़ी आज्ञा दी है कि बाबा के साथ खाते हो, जैसे खा जाते हो बिना बाबा को याद किए। कई बार होता ना भूख बहुत लगती है, बस जैसे भोजन आया टेबल पर तुरंत खा लेते हैं। भक्ति मार्ग में कई ऐसे भक्त हैं, बड़े कट्टर भक्त होते हैं, पहले तो मंत्र जाप करेंगे, फिर एक एक गिट्टी निकालेंगे गाय के लिए, कुत्ते के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि प्रकृति को भी देना है। भगवान को तो हम अर्पित करते ही हैं, लेकिन प्रकृति के पशु पक्षी सबके लिए, क्योंकि सबसे प्यार है। तो बाबा कहते हैं जब भोजन करते हो तो क्या बाबा को याद करके करते हो, बाबा के संग करते हो। बड़ा प्रश्न बाबा ने पूछा है। अगर बाबा को याद नहीं करते हो तो बाबा ने बहुत कड़ा शब्द कहा है, तो बाबा के तुमको शर्म आनी चाहिए। क्यों शर्म आनी चाहिए, अगर कोई पतिव्रता स्त्री होती है और पति ने खाया नहीं है तो वो पतिव्रता स्त्री कभी नहीं खाएगी जब तक उसके पति ने नहीं खाया है। भले रात को देर तक भी उसको जागना पड़ता है, लेकिन जब तक पति को नहीं खिलाया है तब तक वो खुद नहीं खाती है। और फिर उसको गरम गरम खिलाती है, ऐसे नहीं कि कोई ठंडा खिला दिया, लो भाई फड़ा रहा और लो खाओ आप, नहीं, गरम गरम रोटी भी गरम गरम पका के खिलाएगी, भले इतनी देर तक जागना भी पड़े। तो बाबा कहते हैं तुमको भी बाबा को याद करके खाना है, और बाबा संग खाना है, क्योंकि वो तुम्हारा साजन है ना। तो साजन बिना सजनी कैसे खाएगी, खा सकते हैं भाई। तो अगर ऐसे ही खा लेती हो, बाबा को याद नहीं किया, तो फिर तो पक्की सजनी तो नहीं हुई बाबा की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे भूलो मत और मेरे संग संग खाओ। एक बहन बहुत अच्छा अनुभव सुनाती थी, जैसे थाली आती थी, बाबा खाइए, हाँ बाबा आप खाइए, फिर एक गिट्टी खाती थी, फिर दूसरी गिट्टी, बाबा आप खाइए, हाँ बाबा के संग संग खा रहे हैं। तो बहुत प्यार से सुनाती थी। और सचमुच गीता में भी बहुत बड़े शब्द हैं, अगर भगवान को याद करके नहीं खाया तो वो चोर है, वो चोर है। क्यों चोर है, क्योंकि जिसने दिया उसका तो एहसान माना ही नहीं, उसको ऑफर भी नहीं किया, बस खा गए। हाँ भाई, कोई आपको देता है कुछ तो थैंक यू तो बोलो, थैंक्स तो बोलना होता है ना, पर वो भी नहीं, बस खा लिया। इसलिए बाबा ने आज का वो शर्म आनी चाहिए, लजा आनी चाहिए। तो आज से ये प्रण करवाया, बाबा ने प्रण करवाया है कि बाबा को खिलाए बिना, बाबा को स्वीकार कराए बिना हम गिट्टी भी मुंह में नहीं डालेंगे, पहले बाबा को देंगे। हालांकि बाबा खाते नहीं है, हाँ बाबा ये भी कहते बाबा खाते नहीं है, बाबा तो भोगता है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है बाबा तुम तो खाते नहीं इसलिए मैं खाता हूँ, ऐसे भी नहीं। किसने दिया है हमें, तो उसको हमेशा याद करो तो वो भोजन पूरा प्रसाद बन जाएगा, क्योंकि भगवान को अर्पित किया और भगवान ने हमें दिया, आओ बच्चे खाओ, तो फिर वो प्रसाद बन जाता है, उससे मन भी शुद्ध होता है। तो आज बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है, तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। और आज का गीत भी बहुत ही अच्छा है, बहुत समय बाद ये गीत बजाए और उस गीत पर भी बाबा ने बहुत कुछ सुनाया है। तो आज 17/12/2024 है। मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो अपना सौभाग्य बनाने। क्यों आए हो बाबा के पास? अपना सौभाग्य बनाने। परम सौभाग्य उन बच्चों का है, परम सौभाग्य पद्मा परम भाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है। बाबा ने स्वीकार किया हमारा, तब हम कहेंगे कि हम बहुत बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि अंत के समय तो बाबा स्वीकार करेगा ही नहीं, बाबा कहेगा टू लेट, बाबा को आवश्यकता नहीं है। तो जब बाबा का कार्य चलता है तो तन मन धन से सेवा अगर करते हैं तो बाबा स्वीकार करते हैं, नहीं तो बाबा भी अंत में क्यों स्वीकार करेंगे, नहीं तो रिटर्न देना तो पड़ेगा ना बाबा को। तो बाबा कहते हैं परम सौभाग्य उन बच्चों का है जिनका ईश्वर सब कुछ स्वीकार करता है और समय पर दिया, आवश्यकता अनुसार दिया। इसीलिए बाबा कहते हैं तब बाबा स्वीकार करता है, तब उन बच्चों का सौभाग्य है। प्रश्न है, बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? हम बाबा को याद करके नहीं खाएंगे, गफलत करेंगे तो माया देखती है, इसने बाबा को तो याद किया ही नहीं, तो जाओ इन बच्चे के पास और सारा भोजन तुम खा जाओ, तो माया बलवान बन जाएगी और आपको कमजोर कर देगी माया, क्योंकि माया आ गई। तो देखो बाबा कहते हैं, तो बच्चों की किस एक भूल से माया बहुत बलवान बन जाती है? उत्तर है, बच्चे भोजन के समय बाबा को भूल जाते हैं। बाबा को न खिलाने से माया भोजन खा जाती है, जिससे वो बलवान बन जाती है। अब माया को भोजन मिलेगा तो बलवान होगी ना, जिससे वो बलवान बन जाती है, फिर बच्चों को ही हैरान करती है। तो ये छोटी सी भूल माया से हार खिला देती है। भोजन बाबा को स्वीकार न करा के खा लेना, ये छोटी सी भूल है लेकिन बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि माया, हाँ बाबा कहते हैं, हार खिला देती है। इसीलिए बाप की आज्ञा है, बच्चे याद में खाओ, याद में खाओ। कहीं चलो शुरू में बाबा को स्वीकार करा, फिर तो बाबा को याद भी नहीं करते हैं। बाबा कहते याद में खाओ भी, टेबल टॉक, सारा दिन टेबल टॉक चलते रहते हैं ना, जब भी खाएंगे घंटों घंटों बैठते हैं कहीं और बस बातें करते हैं, और खाना ही ठंडा हो गया वहां वो भी भूल जाते हैं। तो फिर ठंडा हो गया फिर बाबा को स्वीकार कराते हैं, बाबा को तो गरम गरम खिलाओ ना, सच्चा साजन है वो। तो फिर देखो आजकल तो क्या कहते हैं, हाँ वो एक आता है चाय पर चर्चा, चलो चाय पियेंगे चर्चा करेंगे। तो बाबा की याद में पानी भी पीते हैं तो भी पहले बाबा को याद करो, दृष्टि दो और फिर स्वीकार करो। हाँ तो देखो बाबा याद की कितनी अच्छी युक्तियां बताते हैं। तो बाबा कहते हैं, तो याद में खाओ, पक्का प्रण करो। क्या प्रण करो? तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग खाऊं। जब याद करेंगे तब वो राजी होगा, आप याद करेंगे तब वो राजी होगा। हाँ तो मुझे याद है एक बार, बहुत पुरानी बात है, हमारे दादा आनंद किशोर थे, वो बहुत हंसाते थे। बहुत हंसाते थे। तो वो बॉम्बे में गए, कोलाबा सेंटर पर नया फ्रिज आया था। उस समय फ्रिज तो एक रेयर चीज थी, आजकल तो आवश्यक है, वो लग्जरी थी। लेकिन वो नया फ्रिज कोई ने दिया और उसमें आइसक्रीम जमाई थी, आइसक्रीम जमाई थी। तो दादी पुष्प शांता थी तब, उस समय तो दादी पुष्प शांता ने उनको आइसक्रीम दी। अब उसने बराबर खा ली। अब फिर याद आया कि मैंने बाबा को तो याद किया ही नहीं। तो दादी को कहा कि दादी मैंने बाबा को तो याद किया ही नहीं। फिर उसने क्या किया, बाबा को पत्र लिखा, बाबा दादी ने मुझे आइसक्रीम खिलाई, नया फ्रिज आया है, लेकिन मैंने बाबा को याद नहीं किया। तो बाबा आप दादी को बोलो कि हमको दूसरी बार आइसक्रीम दे तो मैं याद करके फिर खाऊंगा। तो बाबा ने उसको पत्र लिखा। हाँ, वो बाबा भी रमणीक थे। तो बाबा ने पत्र लिखा, आप तो हो ही भूलों का सागर, हमने भूल की और बाबा को याद नहीं किया, आप बोलो फिर से देवी, तो आप तो हो ही भूलों का सागर। बाबा ने उसको कहा, कोई बात नहीं, मैं बच्ची को लिख देता हूँ, आपको दोबारा देवी तो ऐसे पत्र बाबा लिखते थे। तो उसने भी मजाक किया, बाबा ने भी मजाक किया। अच्छा, तो आज का गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। बहुत सुंदर गीत है। आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, ओ रात के भूले हुए मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, अब घर चल। हाँ, बहुत अच्छा गीत है। सुबह हो रही है, अब घर चलो, तुम रात के भूले हुए हो, सुबह हो रही है, घर चल। इसके बाद भी बहुत अच्छे शब्द है, बहुत हम उस समय सुनते थे, इसको याद है। ओम शांति। बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। तो उसमें आता है सुबह हुई घर चल, अब घर चल। फिर उसमें आता है कि अब भूल जाओ रात को, और अब तुम्हारा भाग्य खुलने वाला है, भोर हो रही है, सवेरा हो रहा है, अब तुम घर चलो, तो तुम भूल जाओ सब, तुम्हारा भाग्य उज्जवल होगा, उसमें है गीत में। तो बच्चे समझते हैं कि हमारे दुर्भाग्य के दिन बदलकर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भाग्य बदलते ही रहते हैं। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, फिर ऊंच होते जाते हैं, आगे नंबर लेता है या आगे क्लास में ट्रांसफर हो जाता है। स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात ऊंच होते रहते हैं। तुम अच्छी रीति जानते हो, अब ये रात खत्म होने वाली है, अब भाग्य बदल रहा है। तो भाग्य बदल रहा है, ये रात खत्म होने वाली है। ज्ञान की वर्षा होती रहती है। सेंसिबल बच्चे समझते हैं, बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम अपना दुर्भाग्य से सौभाग्य बना रहे हैं, अब रात से दिन हो रहा है। ये तुम बच्चों बिगर कोई को पता नहीं है, बाबा गुप्त है तो उनकी बातें भी गुप्त है। वह मनुष्यों में बैठकर सहज राजयोग और सहज ज्ञान की बातें शास्त्रों में लिखी है, गीता में है सहज योग। तो सहज योग, सहज ज्ञान, ये सहज बातें तो भले लिखी है, परंतु जिन्होंने लिखा वो तो मर गए। उन्होंने लिखा, शास्त्र जो लिखे वो तो है नहीं, वो तो मर गए। बाकी जो पढ़ते हैं वो कुछ समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बेसमझ है। अब उन्होंने किस भाव से लिखा, किस प्रसंग के आधार से लिखा, क्यों लिखा, वो तो वो जाने, अब वो तो है नहीं। और दूसरे जो पढ़ते हैं फिर अपना अपना कुछ न कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं। जिन्होंने लिखा वो तो मर गए, बाकी जो पढ़ते हैं वो कुछ समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बेसमझ है। कितना फर्क है, तुम भी नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार समझते हो। सभी एक रस तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दुर्भाग्य किसको, सौभाग्य किसको कहा जाता है, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। और तो सभी घोर अंधियारे में हैं, उनको जगाना है। हाँ, जगाना है समझाकर, ये बातें समझाकर उनको जगाना है। सौभाग्यशाली कहा जाता है किनको, हम तो पद्मा पद्म भाग्यशाली है क्योंकि भगवान हमारे साथ है, परंतु सौभाग्यशाली किसको कहा जाता है, सूर्यवंशियों को, वो सौभाग्यशाली है। और चंद्रवंशी भाग्यशाली है, पर संगम युगवासी पद्मा पद्म भाग्यशाली, तो वो सूर्यवंशियों को सौभाग्यशाली कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण वही है। हम बाप से स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हैं। जो बाप स्वर्ग रचने वाला है, अंग्रेजी जानने वालों को भी तुम समझा सकते हो कि हम, हाँ बाबा ने अंग्रेजी शब्द कहे हैं, जो अंग्रेजी समझते उनको ये इंग्लिश में भी बता सकते हो कि हम हेवनली गॉड फादर द्वारा हेवन का सौभाग्य बना रहे हैं। हेवन में है सुख, हेल में है दुख। गोल्डन एज माना सत्युग सुख और आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है, हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। अंग्रेज क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे, बहुत आएंगे, आ रहे हैं अभी विदेशों में, तो कितने जो भी है उनका जो लौकिक जो धर्म को मानते वो तो क्रिश्चियन है या तो मुस्लिम है, वो भी आते हैं ना, क्यों नहीं आते हैं? अंग्रेज क्रिश्चियन आदि बहुत आएंगे। बोलो, हम अब सिर्फ एक ही हेवनली गॉड फादर को याद करते हैं क्योंकि मौत सामने खड़ा है। तो बाप कहते हैं तुमको मेरे पास आना है, तो मौत सामने खड़ा है, तुमको मेरे पास आना है। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, हाँ उसके गीत में आता है, चिंता छोड़ सभी, हाँ सब चिंता छोड़ और अब घर चलो, हाँ ऐसे कुछ गीत है, तो चिंताओं को छोड़ो अब घर चलो, आपका भाग्य उज्जवल होने वाला है, ये उस गीत में आता है। तो जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना, बोधियों का अपना तीर्थ स्थान है, क्रिश्चियंस का अपना है, हर एक की रस्म रिवाज भी अपनी अपनी होती है। हमारी है बुद्धि योग की बात, जहाँ से पाठ बजाने आए हो, कहाँ से पाठ बजाने आए हो, परम धाम से, वहाँ फिर जाना है। वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर, उसने हमको बताया है कि हम आपको भी सच्चा पथ यानी रास्ता बतलाते हैं। बाप गॉड फादर को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। जब कोई बीमार पड़ते हैं तो उनको सभी जाकर सावधान करते हैं, अब उसकी अंतिम स्थिति है, बस अभी डॉक्टर ने कहा कुछ समय का मेहमान है, अब उसको पता है कि मैं भी अभी जीने वाला नहीं हूँ, तो फिर उनको सावधान करते हैं कि राम कहो, राम कहो, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो, राम कहो। बंगाल में जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, बंगाल में गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरी बोल हरी बोल, तो हरी बोल तो हरी के पास चले जाएंगे। पहले तो करते थे बस एकदम अंतिम श्वास है तो उसका जो है ना लेके जाते थे और मुख उनका गंगा में डालते थे, अब वो नेचुरली उसका श्वास रुक जाएगा और एक सेकंड में मर जाएगा। भाई गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले, ऐसे समझते थे। फिर तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, वो ऐसे थोड़ी भी मरा ही नहीं है और तुम सीधा गंगा में उनका मुख डालते हो कि गंगा जल मुंह में पिए, तो घुट जाएगा, वो तो मर रहा है, तो इसीलिए मना किया। पहले बहुत होता था, तो बाबा कहते हैं जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हरी बोल तो हरी के पास चले जाएंगे, परंतु कोई जाता नहीं है, भगवान के पास कोई जाता नहीं है, सतयुग में तो कहेंगे नहीं, वहां थोड़ी कहेंगे अभी भगवान को याद करो तुमको जाना, वो तो खुद ही आत्मा तैयार है, वो खुद अपनी स्व इच्छा से शरीर छोड़ती है, तो वह परमात्मा को याद नहीं करेंगे, पर किसको याद करेंगे, किसको याद करेंगे। बाबा कहते हैं सतयुग में ये तो कहेंगे नहीं कि राम राम कहो, तो बाकी क्या याद करेंगे, या हरी हरी बोल ये भी नहीं कहेंगे। द्वापर से फिर ये भक्ति मार्ग शुरू होता है, ऐसे नहीं कि सतयुग में कोई भगवान या गुरु को याद किया जाता है, तो किसको याद किया जाता है अंत में, वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है, क्योंकि उसको पता है ना मैं आत्मा ये शरीर छोड़ रही हूं, तो मैं आत्मा हूं ये याद उसको उस समय आता है, वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी, तो वो स्वेच्छा से शरीर छोड़ती है, उस समय उसको साक्षात्कार होता है कि मैं जाके बच्चा बनूंगा, तो दुखी होके नहीं छोड़ती है, स्वेच्छा है, शरीर पुराना हो गया है, तो बाबा सर्प का मिसाल देते हैं, तो बाबा कहते हैं हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेगी, अपनी बादशाही याद पड़ती है। अब महाराजा शरीर छोड़ेगा, उसको पता है ना मैं अगले जन्म में भी फिर ऐसा ही महाराजा के घर जन्म लूंगा, अपनी बादशाही याद पड़ती है, समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे, ये अब पक्का निश्चय है, बादशाही तो मिलनी ही है ना, जरूर मिलनी, हमें भी मिलनी है, उस बादशाह को भी मालूम होगा अंत में कि मुझे बादशाही मिलनी है, बादशाही तो मिलनी ही है ना, बाकी किसको याद करेंगे अथवा किसका किसको दान पुण्य करेंगे। अंत में कईयों से दान भी करवाते, कहते हाथ रखो हाथ रखो, अब वो मर गया, मर गया फिर भी वो उसका हाथ लेके कुछ न वो रखाएंगे, क्योंकि उसको इच्छा थी कि मैं दान करूं, पर दान कर नहीं पाया, जीते जी नहीं कर पाया, तो मरने के बाद भी उस पर हाथ रखवाएंगे कि भाई ये दान करना, अब वो आत्मा तो निकल गई तो उसका भाग्य तो बना नहीं, जीते जी करता होता तो भाग्य बनता, तो इसीलिए बाबा कहते जीते जी करो, ये नहीं मरने के बाद दूसरे करेंगे। हमने तो देखा कितने बाबा के बच्चे जीते जी मरने का भोग लगा देते हैं, पता नहीं हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे कुछ करेंगे या नहीं, हम ही लगा देते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन कई जवान जवान बहने भी करते, माताएं जवान जवान को कहते तुम तो अभी जवान हो, कहते पता नहीं कल मर जाओ तो, जवान हो तो भी क्या, तो ऐसे भी कई बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं बाकी किसको याद करेंगे अथवा दान पुण्य करेंगे, सतयुग में तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, वहां कोई गरीब भी होता नहीं है जिसको जिसको आप जिसको दान पुण्य करे, कोई गरीब ही नहीं है। हाँ, मैं जापान गई थी, मैं जापान का अनुभव सुनाती हूँ, वहां पर अगर है ना, वहां तो ये सब चीजें बहुत सहज है, सस्ती भी है, फ्रिज है, सोफा है, कई ऐसी गैजेट्स है, तो अभी पुराना हो गया है तो बाहर रख देते हैं। तो मैंने देखा रोड पर ये सब फ्रिज रखा है, सोफा रखा है, कई ऐसे चीजें रोड पर रखी है, तो मैंने कहा ये रोड पर क्यों रखा है, क्या कोई ऐसे भाई गरीब आकर के लेके जावे, तो कहा नहीं वहां गरीब वरीब कोई होता ही नहीं है, कोई गरीब नहीं है यहाँ, तो फिर बाहर क्यों रखा है, तो कहा कि वो जो है ना ये कचरा उठाने वाले वो आते हैं, फिर हमको उनको पैसे देने पड़ते हैं कि लो ये उठाओ, उठा के लेके जाओ, क्योंकि हमको चाहिए नहीं, क्योंकि रिपेयर करने का जितना ज्यादा पैसा आएगा उससे कम तो नया खरीदने में आएगा, तो इसीलिए रिपेयर कुछ नहीं कराते, बस उनको भी पैसा देना पड़ता है, नहीं तो कौन उठाएगा, कहाँ दे भी कहाँ क्या करेंगे, इसीलिए किचरे वालों को दे देते हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, वहां वो रखते ही है ताकि वो उठा के ले जाए और पैसा भी साथ में देते हैं। तो बाबा कहते हैं वहां कोई गरीब होता ही नहीं जिसको बैठ दान पुण्य करे। भक्ति मार्ग की रसम रिवाज ही अलग है, ज्ञान मार्ग की रसम रिवाज अलग है। या तो बाबा कहेंगे हाँ कि भक्ति मार्ग में तो कितना दान करते, सतयुग में क्यों दान करेंगे, कोई दान लेने वाला भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, तो सोचेगा भी नहीं कि कोई कुछ मुझे दान करना है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज अलग, ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज अलग है। अभी बाप को सब कुछ दे 21 जन्म का वर्षा ले लिया, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार ही नहीं होगी। सतयुग में ईश्वर बाप को हम सब कुछ दे देते हैं, संगम पर ही हमने सब कुछ बाप का ही समझ लिया, बाबा का ही है, तो फिर भविष्य में तो कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ईश्वर ही स्वीकार करते हैं, स्वीकार न करे तो फिर देंगे कैसे? अब भगवान नहीं स्वीकार करे तो फिर हम देंगे कैसे? वो स्वीकार करता है ना, बाबा के नाम पर कुछ भी करते हैं बाबा स्वीकार करते हैं, और बाबा कहते हैं अभी तो डायरेक्ट स्वीकार करते, भक्ति मार्ग में तो इनडायरेक्ट लेते थे, भगवान को जानते नहीं, लेकिन श्री कृष्ण अर्पणम, हाँ ईश्वर अर्पणम ऐसे कहते थे, हालांकि जानते नहीं थे। अब यहाँ तो हम बाबा को जानते हैं, तो बाबा कहते हैं स्वीकार न करे तो फिर देवी कैसे, न स्वीकार करे तो वो भी दुर्भाग्य, भगवान स्वीकार ही न करे तो वो भी दुर्भाग्य। स्वीकार करना पड़ता है ताकि उनका ममत्व मिटे। हाँ बाबा ये आपका है, तो बाबा कहेंगे हाँ क्यों नहीं बच्चे, बाबा का है, आप केवल ट्रस्टी होकर संभालो। स्वीकार किया बाबा ने, फिर ट्रस्टी होकर संभालने के लिए भी कहा ताकि उनका ममत्व मिटे। ये भी राज तुम बच्चे जानते हो, जब जरूरत ही नहीं होगी तो स्वीकार क्या करेंगे, अंत में नहीं करेंगे स्वीकार। धनवान बहुत आएंगे, अभी उस पता है ये सब खत्म होने वाला है तो आकर के बाबा को देंगे, पर बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ तो कुछ इकट्ठा नहीं करना है, यहाँ से तो ममत्व मिटा देना पड़ता है। तो बाबा ने समझाया है बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को बहुत हल्का समझो, वैसे भी कहते हैं ट्रैवल लाइट, सारे घर का सामान थोड़ी ले जाएंगे, वह जितनी आवश्यक चीजें हैं वही ले जाते हैं, तो बहुत हल्का समझो। हम बाप के बच्चे हैं, हम आत्मा रॉकेट से भी तीखी है, रॉकेट में भी समय लगता है पर ये तो आत्मा रॉकेट से भी तीखी है। ऐसे देही अभिमानी हो पैदल करेंगे तो कभी थकेंगे नहीं, देह का भान नहीं आएगा। जैसे कि ये टांगे नहीं चल रही है, हाँ टांगे नहीं चल रही है, उड़ते जा रहे हैं, ऐसे आप समझेंगे, उड़ रहे हैं तो टांगे थोड़ी उस समय चलती है, पैदल करेंगे तो थक सकते हैं, हम उड़ते जा रहे हैं। देही अभिमानी हो तुम कहाँ भी जाओ, आगे तो मनुष्य तीर्थ आदि पर पैदल ही जाते थे, उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी। आजकल इतना पैदल करते नहीं है, गाड़ी है यहाँ क्यों पैदल जाएं, तो इसीलिए गाड़ियों में ही जाते हैं कई, बाकी तो पैदल भी बहुत करते, गरीब लोग को कहाँ गाड़ी होगी, वो तो पैदल करते हैं। तो बाबा कहते हैं उस समय मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, खास करके जब अमरनाथ जाते हैं वहां तो बहुत पैदल करना पड़ता है, बहुत ऊंचाई है, बहुत चढ़ाई है, पैदल करना पड़ता है, और फिर अमरनाथ की जय अमरनाथ की जय के नारे लगाते हुए पैदल जाते, पर थकते नहीं है। पर जो अमीर लोग होंगे वो कहेंगे हम पैदल क्यों जाए, तो वो क्या होता है, डोली होती है उस पर बैठते हैं और मनुष्य चलाते हैं उसको, तो वो जाते हैं, वो तो मौज करते हैं, उनको पैसा मिल जाता है जो उनको लेके जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे, बाबा को याद करने से मदद तो मिलती है ना, भले वो पत्थर की मूर्ति है, अब जहां भी जाएंगे ऊंचाई पर जाएंगे चढ़ेंगे तो वो तो पत्थर की मूर्ति है, परंतु बाबा उस समय अल्पकाल के लिए मनोकामना पूरी कर देते हैं, भावना का भाड़ा उनको मिल जाता है, तो मनोकामना पूरी कर देते हैं। उस समय रजो प्रधान याद थी, द्वापुर में रजो प्रधान याद थी, तो उससे भी बल मिलता था, थकावट नहीं होती थी। अभी तो बड़े आदमी झट थक जाते हैं, गरीब लोग बहुत तीर्थों पर जाते हैं, हाँ खास करके गंगा, अभी तो तीर्थ अभी आने वाला है कुंभ मेला, 13 जनवरी से कुंभ मेला, बहुत तैयारी कर रही सरकार, बहुत तैयारी, और बीके जी बहुत तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर वहां पर बनाएंगे पेविलियन बनाएंगे, बहुत सेवा होगी, करोड़ों करोड़ों मनुष्य आते हैं। सबसे बड़ा जो संगठन होता है वो भारत के तीर्थ स्थानों पर होता है, ये कुंभ का मेला। तो बाबा कहते हैं उतना उस समय भी तुम जानते हो, भावना का भाड़ा जितना गरीबों को मिलता है उतना साहूकारों को नहीं मिलता है। इस समय भी तुम जानते हो बाबा गरीब निवास है, फिर मुझते क्यों हो? बाबा तो गरीबों का ही है, पूरी पूरी बाबा कहते बूंद बूंद से ये सागर बनता है, बाबा का कार्य चलता है, भूल क्यों जाते हो? बाबा कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं करनी है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। अब आओ, साजन सजनी का संबंध बाबा ने बहुत कहा है, सिर्फ एक साजन को याद करना है। तुम सभी सजनिया हो तो साजन को याद करना पड़े, उस साजन को भोग लगाने के बिना खाने में लज्जा नहीं आती है। वो साजन भी है तो बाप भी है, कहते हैं मुझे तुम नहीं खिलाएंगे क्या? हाँ, बाबा को नहीं खिलाएंगे क्या? तुमको तो हमें खिलाना चाहिए ना। देखो बाबा युक्तियां बतलाते हैं, तुम बाप अथवा साजन मानते हो तो मानते हो ना, बाबा को साजन भी मानते हो तो जो खिलाता है पहले तो उनको खिलाना चाहिए। बाबा हमको खिलाते हैं, हाँ बाबा ने ये सब दिया है तो पहले उनको खिलाना चाहिए। बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बार बार समझाते हैं बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं, अभी ब्रह्मा बाबा की बात है, ब्रह्मा बाबा भी खुद पुरुषार्थ करते रहते हैं कि हम बाबा को याद करके ही खाऊं। हमारी दादियां भी ये पुरुषार्थ करती थी, हमें याद है दादी दीदी जब भोजन पर जाती थी तो दादी जी दीदी जी को कहती थी, दीदी आज पूरा टाइम हम बाबा की याद में भोजन करेंगे, नहीं तो कई आ जाते हैं ना उस समय, समझते दीदी दादी दोनों इकट्ठी बैठी है तो हम दादी दीदी से दोनों से एक साथ पूछ ले, एक साथ उनसे पूछ ले कुछ भी काम है तो दोनों को कहेंगे, दोनों कहते थे आपस में आज हम बिल्कुल बोलेंगे नहीं भोजन पर, बिल्कुल नहीं बोलेंगे दादी, हाँ बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अब जैसे खाना शुरू किया एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो लच्छू बहन बहुत डांटती थी, अब दादियां भोजन करे अभी नहीं जाओ, अभी नहीं जाओ। हाँ जानकी दादी भी भोजन करती थी तो वो हंसा खड़ी होती थी, अभी नहीं जाना दादी भोजन कर रही, क्योंकि भोजन पर क्यों आते हैं, क्यों बुलाते हैं, क्यों बोलते हैं? बाबा की याद में भोजन करना चाहिए। अब ये देखो बाबा ने आज बताया, तो बाबा बार बार समझाते हैं बाबा को याद जरूर करना है। बाबा खुद भी बार बार पुरुषार्थ करते रहते हैं, हाँ मैं भी बाबा की याद में खाऊं। तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, अब माताओं के लिए तो मुश्किल है ना, कितनी बातें याद आती है, कुमारियों को किसको याद करना है, बस बाबा ही साजन बनाना है। हाँ कल भी एक आई रात को मेरे पास, रात को आई 9 बजे, भाई क्या बात है? तो वो उनकी टीचर कहने लगी अब ये दो कुमारियां हैं इन्होंने बाबा को प्रतिज्ञा की है कि हम बाबा से ही सब संबंध जोड़ेंगे, बाबा ही हमारा साजन है, हम तो बाबा की सेवा में लगेंगे। तो इन्होंने कहा मुझे कोई बैज पहनाए और ये प्रतिज्ञा कराए, तो मेरे पास लेकर आए, तो हमने उनको बैज पहनाया और सामने प्रतिज्ञा की कि हम बस बाबा की सेवा में ही लगेंगे। तो टीचर भी इतनी खुश हो गई, दो हैंड्स मिल जाएंगे हमको, हाँ बैठी होगी वो यहाँ बैठ वो बहने। तो बाबा कहते हैं हमको भोग लगाकर हमारी याद में खाओ, इसमें बड़ी मेहनत है। तो बाबा खुद भी पुरुषार्थ करते रहते हैं, तो कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, तुम सीढ़ी चढ़ी नहीं हो, अब शादी हुई नहीं है जो फिर वो लौकिक याद आवे, और शादी हुई तो दोनों परिवार याद करते हैं ना, लौकिक जो माता पिता का वो मायका भी और ससुराल भी, तो बढ़ जाते हैं संबंध ना दोनों के, दोनों प्रकार के। तो बाबा कहते हैं तुम सीढ़ी चढ़ी नहीं हो, कन्या की तो साजन के साथ सगाई होती ही है, तो ऐसे साजन को याद कर भोजन खाना चाहिए, उनको हम याद करते हैं और वो हमारे पास आ जाते हैं। हाँ, ये नहीं सोचो बाबा क्या खाएगा, बाबा तो कुछ खाता नहीं इसलिए खुद ही खा लो, बाबा आ जाते हैं, वो हमारे पास आ जाते हैं, याद करेंगे तो भासना लेंगे, भासना भी लेंगे वासना भी लेंगे, हाँ क्यों नहीं, भासना लेंगे। तो ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए बाबा के साथ, तुम्हारी ये प्रैक्टिस होगी रात को जागने से, माना जल्दी सवेरे उठ करके याद करने से प्रैक्टिस होगी, भोजन पर भी याद करेंगे नहीं तो भूल जाते हैं। अगर सवेरे नहीं उठे, सवेरे अमृत वेला नहीं किया तो दिन में भी कहाँ याद रहेगी बाबा की। तो बाबा कहते तुम्हारी यह प्रैक्टिस होगी रात को जागने से, अभ्यास पड़ जाएगा तो फिर दिन में भी याद रहेगी, भोजन पर भी याद करना चाहिए, साजन के साथ तुम्हारी सगाई हुई है, तुम्ही से खाओ तुम्ही से बैठो तुम्ही संग रास रचाओ, ये पक्का प्रण करना है। जब याद करेंगे तो क्या होगा, जब याद करेंगे तो तभी तो वो खाएंगे ना, अब बाबा को याद ही नहीं करेंगे तो बाबा भी कैसे आएंगे और फिर खाएंगे, उनको तो भासना ही मिलनी है ना, खाएंगे नहीं पर भासना मिलनी है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं जो वो खाए। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इनको जास्ती फैसिलिटीज है, सहूलियत है, सहूलियत है कुमारियों को, है ना, ज्यादा झंझट नहीं है याद करने का किसको। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है, आधा कल्प हमने आपको याद किया है, अब कहो बाबा को, अब क्या कहो उस समय जब भोजन आपके सामने आए तो क्या अंदर में सोचो, वो बाबा बता रहे हैं। शिव बाबा हमारा सलोना साजन कितना मीठा है, आधा कल्प हमने आपको याद किया है बाबा, बाबा को कहो अभी आप आकर मिले हो, हम जो खाते हैं आप भी खाओ, बाबा को कहो, ऐसे नहीं एक बार याद किया बस फिर खुद खाने लगे, एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते जाओ, नहीं, हर गिट्टी पर याद करना चाहिए, हाँ हर जैसे उठाया बाबा को याद किया फिर खाया, देखो ऐसी प्रैक्टिस हो तो बहुत अच्छा। हम तो देखते थे जगदीश भाई को, जगदीश भाई इतने पक्के थे इस बात में भोजन खाते समय, वो यहाँ भी भोजन खाते थे तो मेडिटेशन, वो जो वीआईपी का भोजन का कक्ष है ना बड़ा वाला, तो वहाँ एकदम कोने में जाकर के खाते थे, अब कोने में कौन जाएगा जगदीश भाई से बात करने, बिल्कुल, और सारा टाइम बस भोजन पर ही उनकी नजर होती थी, ऊपर भी करके नहीं देखते थे, इतनी उसमें विल पावर भी थी और इनका प्रण भी था कि भोजन पर बिल्कुल बोलना नहीं है। तो अपने तो बाबा कहते हैं उनको भूलने से तो उनको मिलेगा नहीं, बाबा को नहीं खिलाया और खुद खा गई तो बाबा को मिलेगा नहीं। चीजें तो बहुत खाते हो तुम, हाँ कितनी चीजें खाते हो, खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ऐसे थोड़ी शुरू में याद किया खलास फिर और चीजें वो कैसे खाएंगे। अब जो एक चीज खाली आपने खाई पहली गिट्टी, फिर दूसरी चीज खाएंगे और उस वो नहीं खिलाएंगे तो फिर बाबा कैसे खाएंगे, एक ही खाली गिट्टी खिलाई। तो इसलिए हर गिट्टी पर जो कुछ मुंह में डालो पहले बाबा को याद, हाँ हो सकता है ये कि नहीं हो सकता है, जो समझते हो सकता हाथ उठाओ, हाँ सब हो, सब कह के हो सकता है पर होगा, हाँ ये भी ध्यान रखे। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि एक बार याद किया बस फिर तुम खुद खाते हो, तो क्या खिचड़ी खाएंगे, आम खाएंगे, मिठाई खाएंगे, ऐसे थोड़ी शुरू में याद किया खलास फिर और चीजें वो कैसे खाएंगे। साजन नहीं खाएंगे तो क्या होगा, साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी। हाँ वो कई बार ना छोटे बच्चे होते चंचल होते हैं, अब माँ के हाथ में वो गिट्टी है बेटा खाओ, अब बेटा तो चंचल है वो कुछ ना कुछ करता रहता है और वो गिट्टी मुंह में नहीं डालता है, तो माँ उसको के देखो तुम खाओ खाओ नहीं तो कौवा खा जाएगा, हाँ खाओ खाओ कौवा खा जाएगा, वो कहते कौवा में खाए तो खा लेता है। तो बाबा कहते हैं नहीं तुम अगर बाबा की याद में नहीं खाएंगे तो माया खा जाएगी। तो बाबा कहते हैं साजन नहीं खाएंगे तो माया बीच में खा जाएगी, उनको खाने नहीं देगी। हम देखते हैं माया खा जाती है तो वो बलवान बन जाती है और तुमको हराती रहती है। बाबा युक्तियां सब बतलाते हैं, बाबा को याद करो तो बाप अथवा साजन बहुत राजी होगा। कहते हो बाबा तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, हम आपको याद कर खाते हैं, ज्ञान से जानते हैं आप तो भाषणा ही लेंगे, भी पता है कि बाबा खाएंगे नहीं, ज्ञान तो है ना, ये तो लोन का शरीर है। हाँ बाबा, शिव बाबा ने तो लोन का शरीर लिया है, शिव बाबा तो खाएंगे नहीं, याद करने से वो आते हैं। हाँ कई जब बाबा बाप दादा को खिलाते थे अव्यक्त बाप दादा को, तो बाबा बहुत प्यार से खाते थे, तो किसी ने पूछा ये किसके पेट में गया, जो गुजर दादी बैठी थी ना, शरीर तो गुजर दादी का, तो किसके पेट में गया। हाँ क्या जवाब देंगे, किसके पेट में गया, गया तो गुजर दादी के पेट में ही ना, क्योंकि शिव बाबा को तो पेट है नहीं और ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म शरीरधारी है, तो किसके पेट में गया। हाँ तो जाएगा तो गुजर दादी के पेट में, लेकिन वो भावना का भाड़ा तो बाबा देते है ना, गुजर दादी थोड़ी देगी, अब उनका तो पेट भर गया। परंतु बाबा कैसे लेते थे, हाँ एक थोड़ा सा बाबा को देते थे। हाँ मुझे याद आया, एक बार मैंने एक बार बताया भी है, तो दादी जी बाबा को खिला रही थी, लास्ट में बाबा को खिलाते हैं, तो बहुत जगह से आम आए थे, खास करके भारत में उस समय नहीं होते थे, गर्मी के दिन हमारे पास होते तब आम होता है, सर्दी के दिन थे, और जो साउथ के देश हैं जैसे साउथ अफ्रीका है या ब्राजील है या जो साउथ में देश है मॉरिशियस है, तो उस समय वो आम होते हैं वहां, क्योंकि वहां गर्मी है यहाँ सर्दी है ऊपर, तो वो आम ले आए थे, बहुत सारे विदेशी बहन भाई बहन आम ले आए थे, तो हर एक का वो टुकड़ा टुकड़ा बाबा की थाली में डाला। फिर दादी जी जब खिला रही थी, बाबा आ खाइए, बाबा ये मीठा है आम, बाबा कहते हाँ मीठा है। फिर दूसरा खिलाया, बाबा ये कैसा है, थोड़ा खट्टा है। फिर बाबा ये कैसा है, तो मुन्नी बहन कहती थी उससे ही समय, बाबा ये वहां से आया, ये वहां से आया, उस देश से आया, उस देश से आया है, तो बाबा को सब भोग स्वीकार कराना है क्योंकि विदेश से लेकर के आते थे। तो बाबा कहता था हाँ खट्टा है, थोड़ा मीठा है, थोड़ा फीका है, और बताते थे, तो इसलिए किसके मुख में गया, गया तो चलो ड्रग्स तो गुलजार दादी का था, लेकिन भाषना वासना वो तो बाबा लेते थे, प्यार है ना, ये प्यार का की स्वीकृति है तो बाबा लेते थे। तो बाबा कहते हैं ये तो लोन का शरीर है, याद करने से वो आते हैं, खाएंगे तो ब्रह्मा बाबा ना, परंतु याद करने से वो आते हैं। सारा मदार तुम्हारी याद पर है, इसको योग कहा जाता है, योग में मेहनत है। सन्यासी उदासी ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि याद में मेहनत है। तुमको अगर पुरुषार्थ करना है तो बाबा की श्रीमत को नोट करो, पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसा कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते, जैसा कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो। तो फिर बाबा यशोदादी को कहते, ये लच्छू को कहते थे, हाँ बच्ची बीच बीच में मुझे बाबा की याद दिलाना, बाबा की याद दिलाना, हाँ क्योंकि बाबा भूल सकते हैं मेरी, फिर बाबा की याद दिलाना। फिर दादी जी यशु दादी को, यशु दादी भी दादी के साथ खाती थी, दोनों दादियों, यशु याद दिलाना, बाबा को याद करना है। तो देखो दादियां कैसे ब्रह्मा बाबा को पूरा कॉपी करती थी। तो बाबा कहते हैं हाँ, तो ये याद करने से वो आते हैं, तो सारा मदार योग की मेहनत है। बाबा कहते तो पूरा पुरुषार्थ करो। तो बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, कहते हैं जैसा कर्म मैं करता हूँ तुम भी करो, वही कर्म मैं तुमको सिखलाता हूँ। बाबा को तो कर्म करना नहीं है, अब ये ब्रह्मा बाबा को करना है तो वो सिखलाते, शिव बाबा को तो कर्म करना नहीं है। सतयुग में कर्म कूटते नहीं, बाबा बस सहज बातें बताते हैं, तुम्हीं से बैठूं, तुम्हीं से सुनूं, तुम्हीं से खाऊं, ये तुम्हारा ही गायन है। साजन के रूप में व बाप के रूप में याद करो, गाया भी हुआ है ना, विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालते हैं, इस प्रैक्टिस से विकर्म भी विनाश होंगे, तंदुरुस्त भी बनेंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे उनको फायदा होगा, जो नहीं करेंगे उनको नुकसान होगा। बाबा तो बताते, अभी नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, करेंगे तो फायदा होगा। सारी दुनिया तो स्वर्ग का मालिक नहीं बनती है, ये भी हिसाब किताब है, कौन बनेंगे स्वर्ग का मालिक। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, गीत तो सुना ना, बरोबर हम यात्रा पर चल रहे हैं। रात के मुसाफिर, सुबह हुई घर चल, तो बाबा कहते हैं हम यात्रा पर चल रहे हैं, यात्रा पर भोजन आदि तो खाना ही पड़ता है। सजनी साजन के साथ, बच्चा बाप के साथ खाएंगे। यहाँ भी ऐसे है, तुम्हारी साजन के साथ जितनी लगन होगी उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। निश्चय बुद्धि विजयंती होते जाएंगे, योग माना दौड़ी, याद की यात्रा। हाँ, यात्रा क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दौड़ी है, घर जाना है, फिर नई दुनिया में जाना है, तो ये बुद्धि से दौड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं याद माना दौड़ी। हम स्टूडेंट है, ये बुद्धि योग की दौड़ी है, हम स्टूडेंट है, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं, टीचर हमको दौड़ना सिखलाते हैं, चलो परमधाम, चलो सतयुग में, चलो सूक्ष्म वतन में, है ना, पांच स्वरूपों की याद, बाबा कहते हैं। बाप कहते हैं ऐसे नहीं समझो कि दिन में सिर्फ कर्म ही करना है, नहीं, हाँ दिन में भी याद में रह सकते हैं। कछुए मिसल कर्म कर फिर याद में बैठ जाओ, कछुआ भी वैसे ही करता है ना, खाता है, सिर निकालता है, हाथ पैर निकालता है, खाता है, फिर जब पूरा हो गया खाना तो फिर से सिर हाथ पैर सब अंदर कर लेता है। भ्रमरी तो सारा दिन भूभू करती है, फिर कोई उड़ जाते हैं, कोई मर जाते हैं, वो कीड़े उनको जिनके ऊपर भूभू करती है, तो कोई तो कीड़ों को पंख लग जाते उड़ जाते और कोई तो मर जाते हैं। वो तो एक दृष्टांत है, यहाँ तुम भूभू कर आप समान बनाते हो, उसमें कोई का तो बहुत लव रहता है बाबा के साथ, कोई सड़ जाते हैं, एक दो थोड़ा आए ज्ञान में चले, रोज क्लास किया, छह महीने तक चले, फिर ओम शांति, तो सड़ गए ना, तो फिर सड़ जाते हैं, कोई अधूरे रह जाते हैं, भागंती हो जाते हैं, फिर जाकर कीड़ा बनते हैं। भूभू किया टीचर ने तो ज्ञान पाया, फिर उड़ने भी लगे, पर फिर चले गए, भागंती हो गए तो सड़ गए, तो फिर कीड़ा जाकर के बनते हैं। तो ये भूभू करना बहुत सहज है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हम योग लगा रहे हैं, देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, यही ज्ञान गीता में था, यही ज्ञान गीता में था, वो मनुष्य से देवता बनाकर गए थे ना। शिव बाबा ने कल पहले गीता का ज्ञान दिया था और देवता बनाकर चले गए थे, सतयुग में तो सब देवताएं थे, क्योंकि गीता में आता है मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। तो बाबा कहते हैं वो मनुष्य से देवता बनाकर गए थे, सतयुग में तो सब देवताएं थे, जरूर उन्हों को संगम युग पर ही आकर देवता बनाया होगा, वहां तो देवता बनने का योग नहीं सिखलाएंगे ना, सतयुग में तो नहीं सिखलाएंगे ना देवता बनने का योग। सतयुग आदि में देवी देवता धर्म था और कलयुग अंत में है आसुरी धर्म। ये बातें सिर्फ गीता में ही लिखी हुई है, मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगती है, ये ग्रंथ में है, मानुष से देवता की ये करत न लागी वार। क्योंकि एम ऑब्जेक्ट बता देते हैं, वहां सारी दुनिया में एक धर्म होगा। अब सुनो सतयुग में क्या होगा, सारी दुनिया में एक ही धर्म होगा। दुनिया तो सारी होगी ना, सारी होगी दुनिया, पर एक धर्म होगा। ऐसे नहीं कि चीन और यूरोप नहीं होंगे, वो खंड भी होंगे, वो देश भी होंगे, परंतु वह मनुष्य नहीं होंगे। बाबा ने एक बार विदेशियों को कहा कि सतयुग में तुम्हारा अमेरिका नहीं होगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, तो क्योंकि सब एक भारत ही होगा। तो उन्होंने कहा बाबा वहां पर अमेरिका नहीं होगा, परंतु ये खंड तो होगा ना, धरती तो होगी। तो बाबा ने कहा धरती होगी, धरती होगी तो तुम वहां जाएंगे पिकनिक करने के लिए, पिकनिक करने जाएंगे क्योंकि वहां और तो कोई होंगे नहीं, वो पिकनिक स्पॉट्स बन जाएंगे। तो ऐसे बाबा हंसाते थे विदेशियों को। तो ऐसे में चीन यूरोप नहीं होंगे, होंगे परंतु वह मनुष्य नहीं होंगे, सिर्फ देवता धर्म वाले ही होंगे और धर्म वाले होते नहीं। अभी है कलयुग, हम भगवान द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। तो बाप कहते हैं तुम 21 जन्म सदा सुखी बनेंगे, इसमें तकलीफ की कोई बात ही नहीं है। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने लिए कितनी मेहनत की है, कहते हैं पार निर्वाण गया, अपार निर्वाण गया, ऐसे कभी नहीं कहेंगे भगवान के पास गया। सन्यासियों के तो लिए खास कभी नहीं कहेंगे भगवान के पास गया, वो कहेगा ब्रह्मलीन हो गया, ज्योति जोश समाया, पर भगवान के पास गया ये शब्द नहीं है। ब्रह्म कोई भगवान मानते हैं, और या स्वर्ग में गया तो सन्यासियों के लिए तो कभी नहीं कहेंगे, गृहस्थियों के लिए कहेंगे स्वर्ग गया, चलो भगवान के पास गया। इसलिए कहते हैं मरने के बिना न स्वर्ग जा सकते हैं न भगवान के पास जा सकते हैं, मरना पड़ता है भगवान के पास जाने लिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे कभी नहीं कहेंगे भगवान के पास गया, कहेंगे स्वर्ग गया। एक के जाने से तो स्वर्ग नहीं बनेगा ना, सबको जाना है। गीता में लिखा हुआ है भगवान कालों का काल है, मच्छरों सदृश सभी को वापस ले जाते हैं। साक्षात्कार हुआ ना अर्जुन को, कैसे सब मच्छरों सदृश, वो तो विराट रूप दिखाते विष्णु का, उसके मुंह के अंदर चले गए सारे मच्छरों सदृश। बुद्धि भी कहती है चक्र रिपीट होना है, तो पहले पहले जरूर सत्युगी देवी देवता धर्म रिपीट होगा, फिर बाद में और धर्म रिपीट होंगे। बाबा कितना सहज बतलाते हैं मन मना भव, बस 5000 वर्ष पहले भी गीता के भगवान ने कहा था लाडले बच्चे मन मना भव। अगर श्री कृष्ण कहेंगे तो दूसरे धर्म वाले कोई सुन न सके। अब ये मन मना भव भगवान ने कहा सबके लिए, पर समझो क्राइस्ट कहेगा तो क्रिश्चियन धर्म वाले ही सुनेंगे, फिर और सब धर्म वाले कैसे सुनेंगे। इसलिए ये भगवान ने कहा जो सभी धर्म की आत्माओं के पिता है। तो अगर श्री कृष्ण भी कहेंगे तो फिर दूसरे धर्म वाले कोई सुन न सके, क्योंकि वो तो गीता पढ़ेंगे नहीं और धर्म वाले। भगवान कहेंगे तो सभी को लगेगा कि गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, जिसमें फिर हम जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। इसमें कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं है, सिर्फ सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है। तो तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, कर्म करते दिन रात ऐसे पुरुषार्थ करते रहो, विचार सागर मंथन नहीं करेंगे या बाप को याद नहीं करेंगे, सिर्फ कर्म करते रहेंगे तो रात को भी वही ख्याल चलते रहेंगे, रात को भी वही ख्याल चलते रहेंगे। मकान बनाने वाले को मकान का ही ख्याल चलेगा, बल विचार सागर मंथन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पर है, ब्रह्मा बाबा पर है। परंतु कहते हैं कलश तो लक्ष्मी को दिया, तो तुम लक्ष्मी बनती हो ना, ज्ञान दूसरों को तुम्हें देना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्री मत को नोट कर पुरुषार्थ करना है। बाप ने जो कर्म करके सिखाया है वो ही करने हैं। विचार सागर मंथन कर ज्ञान की पॉइंट्स निकालनी है। दूसरा अपने आप से प्रण करना है कि हम बाप की याद में ही भोजन खाएंगे, तुम्ही से बैठूं तुम्ही से खाऊं, ये वायदा पक्का निभाना है। वरदान कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त बनाने की, सबको मुक्त बनाने की सेवा है। तो औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं देना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहाँ तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं। व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त। स्लोगन, जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय है। भोलानाथ के प्रिय कौन है? जो सरल चित्त और सहज स्वभाव वाले हैं, वही सहज योगी भोलानाथ के प्रिय हैं। आज का व्यक्त इशारा, आज 17 तारीख है। ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, मन की संतुष्टता है। ये ब्राह्मण जीवन का आंतरिक वर्षा है। इसका अनुभव करने के लिए मनसा की पवित्रता चाहिए। बाहर के साधनों द्वारा या सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, ये भी अपने को धोखा देना है। केवल बाहर के साधनों द्वारा या केवल बाहर की सेवा द्वारा अपने आप को खुश व संतुष्ट रखना, ये भी अपने को धोखा देना है। इन गुणों का भी अनुभव हो तब कहेंगे हाँ, खुश नसीब भी कहेंगे, संतुष्ट मणि भी कहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे।